नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 16 पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना। इस अध्याय के आज 23 नंबर श्लोक। आदिश तोम द्विजश्रेष्ठ विधिम तत् उपधावनम आसु तुष्यति मे देवः चिदन्त्यः सह पुत्रकैः। आदिसत्त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तत् उपधावनम् आसु तुष्यति मे देवः चिदन्त्यः सह पुत्रकै। आदिसत्त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम् आसु तुष्यति मे देवः चिदन्त्यः सह पुत्रकैः। आदिसत्त्वं द्विजश्रेष्ठ विधि तदुपधावनम् आसु तुष्यति मे देवः चिदन्त्यः सह पुत्रकैः। आदिसत्त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम् दृश्यति मे देव चिदन्त्यः सह पुत्रकै। आदिसत्त्वं द्विजश्रेष्ठ आसु तुष्यति मे देवः चिदन्त्यः सह पुत्रकै। आदिसत्त्वं द्विजषष्ठ विधिं तदुपधावनम् आसुतस्यति मे देव सिदन्त्या सह पुत्रकैः. वैष्णवी शब्दार्थ आदि स मुझे उपदेश दें. तोम हे मेरे पति. द्विज श्रेष्ठ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ. विधिम विधि विधानों को. तत् भगवान. उपधावनम पूजा की विधि. आसु शीघ्र. तुष्यति प्रसन्न हो जाता है. मैं मुझ पर. देवः भगवान. सिदन्त्याः अब शोक करते हैं. सह साथ. पुत्र कई ही अपने सारे पुत्र देवताओं के. अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. अनुवाद. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश दें, जिससे भगवान मुझ पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं और मुझे मेरे पुत्रों सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थिति से उबार लें. दोहराइए. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश दें, जिससे भगवान मुझ पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं और मुझे मेरे पुत्रों सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थिति से उबार लें. तात्पर्य, कभी कभी अल्पज्ञ व्यक्ति ये पूछते हैं कि क्या आध्यात्मिक उन्नति हेतु भक्ति करने के लिए उन्हें गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए. इसका उत्तर यहाँ दिया गया है. यही क्यों भगवद गीता में भी जहाँ अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है, शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, वेदों का भी यह उपदेश है. तद विज्ञानार्थं स गुरुम एवाभिगच्छेत्. यदि कोई सचमुच आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का इच्छुक है तो उसे समुचित मार्गदर्शन के लिए गुरु बनाना चाहिए. भगवान कहते हैं कि मनुष्य को आचार्य की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह भगवान का प्रतिनिधि होता है. आचार्य मांग बिजानियात. मनुष्य को यह अवश्य समझ लेना चाहिए. चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि गुरु भगवान का अभिव्यक्ति होता है. अतएव शास्त्र में प्राय सभी प्रमाणों तथा भक्तों के व्यावहारिक आचरण के आधार पर मनुष्य को किसी को वा किसी की गुरु बनाना चाहिए. अदिति ने अपने पति को अपना गुरु मान लिया, जिससे वे उसका मार्गदर्शन कर सकें कि किस तरह भगवान की पूजा करके आध्यात्मिक चेतना या भक्ति में प्रगति करनी चाहिए. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्. वंदे अहं श्री गुरु श्रीजुता पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आदि सत्वं द्विज श्रेष्ठ विधि तदुपधावनम् आसूतस्यति मे देवः सिदन्त्याः सह पुत्रकैः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कृपा करके मुझे भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश दें जिससे भगवान मुझ पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं और मुझे मेरे पुत्रों सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति से उबार लें। ये कौन कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं? अदिति, माता अदिति कश्यप मुनि को, जो उनकी पति भी है और जिनको गुरु रूप में भी मानती है, उनको ही वो बोलती है इस श्लोक में। आप जैसे जानते हो कि देवता राक्षस तथा दैत्य, देवता दैत्य बाद राक्षस, ये सभी के पिताजी एक ही है। कौन? कश्यप मुनि। लेकिन माताजी सब भिन्न भिन्न है। देवताओं की माताजी है अदिति। गीता में भगवान कहते कि आदित्यानं अहं विष्णु। ये अदिति के पुत्रों में से मैं कौन हूं? विष्णु। कौन? वामन देव, बारह पुत्र हैं अदिति की गर्भ से आए थे। और दिति की पुत्रों को कहते हैं, इनके दूसरे पत्नी दिति की पत्नी पुत्रों को कहते हैं दैत्य। उनकी और भी एक पत्नी थे दनु, दनु के पुत्रों को कहते हैं दानव। ये दैत्य और दानव दोनों दोस्त रहते हैं, ये दोस्ती इनकी रहता है कि उनके स्वभाव ऐसा ही है। जैसे गीता में कहा गया दैत्य के स्वभाव कैसा है, ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन देवताओं के स्वरूप ठीक उससे विपरीत होता है। तो देवता लोक ने भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और ये दैत्य लोक व दानव लोक कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, इसलिए इनको राक्षस कहते हैं। किसी भी स्थिति में कोई संकट आता है, विपद आता है, ये अपने बाहुबल के ऊपर विश्वास रखते हैं, ये कभी भी भगवान विष्णु के शरण में नहीं जाते हैं। तो लेकिन कभी ये दोनों भाई भाई है, देवता राक्षस में क्या संपर्क है, पिताजी एक ही है तो भाई भाई है ना। लेकिन फिर भी स्वर्ग के आधिपत्य के कारण ये दोनों में लड़ाई चलते रहता है। भगवान विष्णु प्रकृति में देवताओं के ही स्वर्ग की आधिपत्य प्रदान किए हैं। इन्होंने देवताओं की स्वर्ग की अधिपति इंद्र को ही इंद्र पद में अधिष्ठित करके ही, जो कि अदिति की पुत्र, तो स्वर्ग के शासन के दायित्व उनको दे देते हैं, देवताओं को देते हैं। क्योंकि देवता लोग ने प्रकृति में अच्छे बुरे विचार करके ही भगवान के निर्देशन के आधार पर चलने में संभावना रहता है, लेकिन राक्षस को कभी भी नहीं। लेकिन राक्षस लोग स्वर्ग के ऐश्वर्य को भोगने के लिए भी इच्छुक रहते हैं, इसलिए कभी कभी ये बलात्कार से अपने बाहुबल से देवताओं को भागाना चाहते। कहां से? स्वर्ग से भागाकर स्वयं इंद्र के सिंहासन में बैठने के लिए प्रत्याशी रहते व प्रयास भी करते। तो इसलिए एक बार ऐसा ही हुआ कि बलि महाराज, ये राजा थे किनकी? दैत्यों की, बा राक्षसों के राजा थे। यदि वो भी भगवान के महान भक्त हैं, बारह महाजन में एक महाजन भी माने जाते हैं, कौन? बलि महाराज। लेकिन फिर भी ये भी इंद्र को भागाकर स्वर्ग को छीन लिए और स्वर्ग के राजा बन गए स्वयं। देवता लोग ने भय से सब छुप गए। अपने गुरु बृहस्पति के पूछे क्या करना चाहिए। बृहस्पति ने कहे कि देखो, अभी ये भृगुवंशी ब्राह्मण के द्वारा विशेष शक्ति इनको प्रदान की गई, ब्राह्मण लोग को ये पूजा किए, इसलिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न है। किसके प्रति? बलि महाराज के प्रति। इसलिए यह भी राज सिंहासन में बैठे हैं ब्राह्मण के आशीर्वाद लेकर, अभी आप इनको प्रसन्न नहीं कर पाओगे, सॉरी अभी इस समय आप इनको परास्त नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छा है कि आप छुप जाओ और सुजोग देखो, जब भी फिर ये गुरु के वही ब्राह्मण के चरण में अपराध करेंगे फिर इनकी पतन होगा। बाद में बलि महाराज ने वही शुक्राचार्य के निर्देशन को माने नहीं, वो बड़ा कहानी है। लेकिन अभी तब तक तुम छुप के छुपे रहो। तो देवता लोग ने सुबह आकर मर्त्य लोक में इधर उधर सब अपने भेष को बदलाकर छुपे रहे। लेकिन माता अदिति ने अपने पुत्रों को स्वर्ग में न देखकर बड़ा दुखी हुई, चाहते थे कि मेरे पुत्रों फिर स्वर्ग के शासन करें। उनके ही पुत्रों में से भी कोई इंद्र बना, कोई राजा बना, कोई सब अलग अलग पोस्ट है ना, ये सब इंद्र चंद्र वरुण वायु आदि ये सब जो पोस्ट है, एक एक डिपार्टमेंट के हेड ये देवताओं बनते हैं। आपको कोई इच्छा है कोई डिपार्टमेंट हेड बनने के लिए? इच्छा भी होता है ना भक्तों को कभी कभी, जो यही साधारण राधा रासबिहारी मंदिर व कोई छोटा कोई संस्था के कई लोगों की इच्छा होता है हम भी प्रेसिडेंट बन जाए या जीबीसी बन जाए, ऐसी इच्छा होती ना। इससे कई ऊंचा पद है देवताओं के जो लोग है, एक डिपार्टमेंट का अधिकारी बनना है, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी कौन है? अग्निदेव। वायु डिपार्टमेंट, एयर डिपार्टमेंट के अधिकारी वायुदेव है, और इसी प्रकार अलग अलग। इंद्र कौन सा डिपार्टमेंट है उनके अंडर में? बारिश का डिपार्टमेंट है। तो इसमें सभी देवताओं की अलग अलग डिपार्टमेंट से अधिकारी है। माता अदिति चाहती थी कि मेरे पुत्र फिर वापस आ जाए और स्वर्गो की शासन करें, इसी। लेकिन उस समय अदिति सॉरी अदिति की जो पति कौन कश्यप मुनि अनुपस्थित थे, उन्होंने कठोर तपस्या करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए तपो दिव्य दिव्य पुत्र कहा, शुद्धेन जैन सत्ता ऋषभदेव कहते हैं। फिर उन्होंने तपस्या में चले गए थे, कई दिनों की बात, कई हजारों साल तपस्या की बात, उन्होंने वापस आ रहे। तो मैं मनुष्य की काउंटिंग में, अब मनुष्य में जब हमें एक साल बीत जाता है देवताओं की कितना दिन होता? एक दिन होता, तो इसे बहुत देर। लेकिन जो कश्यपुनि वापस आते हैं, देखते कि उनके आश्रम लगता कि कई दिनों से सफाई नहीं किया गया, आश्रम के प्रत्येक जितने भी सदस्य सब दुखी देख रहे हैं, सभी हर्षित नहीं है, सब दुखी है। अपने पत्नी को भी इसी रूप में पाए, किसको? अदिति को। कई दिनों से कैसे विन्यास नहीं किए थे, कैसे सज्जा नहीं की थी, मलिन वस्त्र पहनी हुई थी, जमीन की ऊपर ऐसे ही बैठी जब बैठती थी उसको देखकर पूछे जैसे श्री राधारास बिहारी की जय, जैसे गौर नेताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। पूछे तो अदित ने अपने दुख को व्यक्त की, उन्होंने कहे कि मेरे पुत्रों को मैं स्वर्ग में फिर वापस देखना चाहती हूं, ये राक्षसों ने भगा दिए मेरे पुत्रों को स्वर्ग से, बलि तथा उसकी जो चले लोग सब मिलके मेरे पुत्रों को स्वर्ग से भगा दिए, कहां छुपे हुए मेरे पुत्र, मैं इनको न देखकर बड़े दुखी हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र फिर स्वर्ग में वापस आकर फिर स्वर्ग की शासन करें, इनको सुखी देखकर मैं भी सुखी रहूंगी। लेकिन कश्यप मुनि पहले उनको तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग के बारे में कहे, ये सब सुख दुख इसको सहन करना चाहिए है? और बहुत समझाने पर भी इसमें दुखित नहीं हुआ, लेकिन उनकी तो एक ही लक्ष्य था मेरे पुत्रों को वापस आना स्वर्ग में। तो अंत में कश्यप मुनि कहते कि किसी भी व्यक्ति की समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अवश्य भगवान विष्णु की प्रसन्न करना चाहिए, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो अवश्य हमारे समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं, दुख की समस्या हल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं सारा जगत ही प्रसन्न हो जाता है, इसलिए उन्होंने अपने पत्नी को अदिति को कहते कि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करो, यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे समस्त समस्या समाधान हो जाएगी। इसीलिए इसी प्रकार उन्होंने अपने कभी कभी दीति का भी समस्या हो गया था, एक बार दीति का भी पुत्र हिरण्यक्ष हिरण्यकशिप को दोनों को नृसिंहदेव वध कर, नृसिंह और बराह वध कर दिए, तभी उन्होंने भी इस प्रकार कश्यप मुनि को कही थी, ये इंद्र ने भगवान विष्णु को बुलाकर मेरे दोनों पुत्र को मरवा दिया, इसलिए मैं चाहता हूं इंद्र की बद्ध हो जाएगा, बद्ध हो जाए इसलिए मुझे तपस्या करना चाहिए, कुछ बुद्धि मुझे रास्ता बताइए। उनको भी उन्होंने कहे कि इसका भी उपाय है, अब भगवान को प्रसन्न कर सकोगे तभी समस्या होगा। कश्यप मुनि प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ किसको लड़ाई कराना नहीं चाहते थे, इसलिए लेकिन पुंगसयन व्रत की विधि उन्होंने कहा था किसको, दीति को, दीति ने व्रत को पालन नहीं कर पाया, विधि ठीक से पालन नहीं कर पाया, राक्षसों की माता अवश्य रजगुण और तमगुण में ही है, इसलिए वो विधि को पालन करने के लिए कम से कम सत्वगुण स्थिति में रहना जरूरी है। इसलिए इन्होंने अदिति को कहे कि आप भी इस प्रकार एक व्रत धारण करो, उस व्रत के नाम आगे वर्णन की जाएगी, इसको कहते पयोव्रत, इस प्रकार अध्याय के नाम दी गई, पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना भगवान को प्राप्त करने की सबसे सहज और सरल उपाय बता गया। 12 दिन के अंदर ही भगवान वामन देव स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए इस पयोव्रत को पालन करने के कारण। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पयो का अर्थ क्या, दूध, दूध पीकर व्रत रखना फाल्गुन महीना की शुक्ल पक्ष के प्रतिपद से लेकर कब तक, द्वादशी तक है, तो भी ये व्रत धारण करने से ही वामन देव को प्राप्त हो। 12 दिन में हम सोचते कि ध्रुव महाराज सबसे जल्दी भगवान को प्राप्त कर लिए 6 महीना में, नहीं, पय व्रत धारण करके माता अदिति ने वामन देव को साक्षात दर्शन कर लिए कितने दिन में, 12 दिन में। तो इसलिए इसकी पहले की घटना है, तो उन्होंने पूछ रहे अभी व्रत धारण नहीं किए, लेकिन उन्होंने अपने पति को जिज्ञासा करते कि आदि सत्वंग दीज श्रेष्ठ, मुझे आदेश कीजिए, आप समस्त ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, कौन, कश्यप मुनि, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो सर्वश्रेष्ठ, समस्त ब्राह्मणों में आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कश्यप मुनि किसके पुत्र है, किसके पुत्र, कश्यप मरीचि के पुत्र, ब्रह्मा जी के ग्रैंडसन है, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, फिर उनके पुत्र है कश्यप। तो कहते कि आप ब्राह्मण के श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पोता है तो ब्रह्मा ब्राह्मण है, आप समस्त ब्राह्मणों में से सर्वोत्तम हो, इसलिए मुझे विधि उपधावन, मुझे उस विधि का उपदेश कीजिए जिस विधि से मैं भगवान हरि को प्रसन्न कर पाऊंगी। आपने कहे कि भगवान भरी को प्रसन्न करने से सारे समस्या की हल हो जाता है, तब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मुझे कृपा करके उस व्रत के विधि को बताइए, हैं? जिस विधि से, जिस व्रत पालन करने से मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगी। आशुतोष्यति मे देव सिदंत्या सहपुत्र का, जिस व्रत को धारण करने से आशु का अर्थ क्या, जल्दी से जल्दी है, आशु तुष्यति प्रसन्न हो जाएंगे, कौन प्रसन्न हो जाएगा, देव भगवान विष्णु। जिस व्रत को धारण करने से जल्दी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे और मैंने सब मेरा समस्त इच्छा को पूर्ण करेंगे, सिदंत्या सह पुत्र कई प्रसन्न, और मुझे मेरे पुत्र सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थिति से मुझे उबार लेंगे, ऐसे ही व्रत की विधि मुझे बताइए। ये भक्त भगवान कहते कई रूप में मेरी शरण में आते, चार प्रकार के भक्त शरण में आते हैं, चतुर्विध भजते माम जना सुकृति न अर्जुन, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। यहाँ पर माँ अदिति की कैटेगरी कौन सा है, आर्त विपदग्रस्त होकर है भगवान को पुकार रही, यदि मैं व्रत धारण करना चाहता हूँ, भगवान की कृपा चाहता हूँ, लेकिन वो मुख्य के लिए नहीं व भक्ति के लिए नहीं, किसके लिए भगवान की शरण में जा रही है, अपने पुत्रों को वापस चाहती है स्वर्ग में। इसलिए देवताएं बड़े सुकृतिवान होते हैं, और दुष्कृतिवान कौन होते हैं, राक्षस भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, नमांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते, ये सब शरण में नहीं आते। इसलिए माता अदिति उस व्रत की विधि को, पयो व्रत की विधि को अपने पति से श्रवण करना चाहती, कैसे व्रत धारण, और व्रत धारण करने के लिए वो भी तैयार हैं। प्रभुपाद जी कहते कि ये ही प्रकृत में मार्ग है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना की, करने की। कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं, कहते कि नहीं नहीं हमको गुरु बनाने कोई जरूरत नहीं है, किससे सीखने की जरूरत नहीं है, हैं? हम डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से भक्ति कर सकते, गुरु का क्या जरूरत है, हैं? इस कलयुग में कोई गुरु फुरु नहीं है, ये कलयुग में सब ऐसे ही है, इस युग में कोई जरूरत नहीं है। तो कहा गया कि हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्ते इव गतिरण्यता, कलयुग में कोई दूसरी गति नहीं है सिर्फ हरिनाम है। हम गुरु न बनाकर भी हरिनाम कर सकते, हरिनाम करके ही उद्धार हो जाएंगे, बस कुछ भी दूसरे विधि, गुरु बनाने की क्या जरूरत है। कुछ ऐसे प्रभुपाद जी कहते कि ऐसे व्यक्ति पूछते हैं कि क्या आध्यात्मिक उन्नति हेतु भक्ति करने के लिए उन्हें हमें गुरु पास में जाकर शिक्षा ग्रहण करना क्या जरूरी है, हैं? प्रभुपाद जी कहते कि जरूरी है, गुरु के बिना भवसागर से उद्धार होना संभव नहीं है। यदि भी कोई सोचता है कि मैं हरिनाम के आश्रय लूंगा, हैं? लेकिन हरिनाम शुद्ध रूप से जप करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु की सेवा करने की जरूरी है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, वैष्णव की सेवा के बिना, वैष्णव की कृपा के बिना, सदगुरु की कृपा के बिना कोई भी भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता है। माया की फांस से मुक्त होना अपने प्रयास से संभव नहीं है। कोई बंधे हुए जीव है, कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, बंधा हुआ स्वयं को कैसे स्वयं खोलेगा, खोल नहीं सकता, इसको खोलने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है जो स्वयं ही भी खोले हो, जो मुक्त हो। इसलिए गुरु मुक्त पुरुष है, भगवान के महान भक्त होते हैं। इसलिए रूपा जी कोट करते कि आचार्य मांग बिजानियात, भगवान स्वयं कहते कि मैं ही आचार्य के रूप में इस धरा पर प्रकट होता हूं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर, सारे शास्त्र को की सिद्धांत है, सद्गुरु को साक्षात हरि के समान सम्मानित करना चाहिए। यदि वो गुरु स्वयं भगवान नहीं कहता, लेकिन उसको भगवान के समान सम्मान देने की, वो सम्मान प्राप्त करने की योग्य है, क्योंकि वो भगवान को अति प्रिय है। किंतु प्रभुर्ज्य प्रिय एव तस्य, भगवान हरि की अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए किसी विशेष जीव को शक्ति प्रदान करके ही भेजते हैं, इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि इनको शक्त्यावेश अवतार, ये शक्ति प्राप्त करते हैं कृष्ण के द्वारा। तो प्रभुपाद जी का चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है इस बात को कि गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्तगणे। शास्त्र के प्रमाण दी गई कि गुरु कृष्ण हन शास्त्र रूप, गुरु जो होते हैं ये ही भगवान के ही दूसरे रूप है, इसलिए इनको कहते हैं कि आचार्य मान बिजानिया, ये आचार्य के रूप में जो भूमिका निभाते हैं। असली आचार्य तो स्वयं सभी आचार्य के आचार्य कौन है, कृष्णंग वंदे जगत गुरुम, भगवान ही आचार्य की भूमिका स्वयं निभाकर हमें गीता प्रदान किए हैं, लेकिन उन्हीं का ही प्रतिनिधि के रूप में फिर सदगुरु आते हैं। चारों संप्रदाय में ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य, अभी इन दोनों का ही तिरुभाव आने वाला काल परसु है, और कुमार संप्रदाय के आचार्य निम्बार्क आचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी, ये आचार्यों की जरूरत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही आचार्य रूप में आकर शिक्षा देता हूं कैसे उनके धाम में जाना, भगवान के धाम में कैसे जाना है भगवान स्वयं बताते हैं, किसके माध्यम से बताते हैं, आचार्यों के माध्यम से। इसलिए गुरु ही कृष्ण की भूमिका, कृष्ण की कृष्ण रूप, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाण, शास्त्र के प्रमाण ली गई है। प्रभुपाद जी वहां पर भी इसको कोट करते हैं, आचार्य मांग भी जानी आता है। मर्त्य बुद्धि में, साधारण भौतिक बुद्धि में गुरु को नहीं देखना चाहिए, तो गुरु भगवान का ही विशेष प्रतिनिधि होते हैं, भगवान से जो वाणियां में सुनते हैं बा जो गीता को डायरेक्ट पढ़ते हैं उसी सिद्धांत को परंपरा से सदगुरु हमारे पास में पहुंचाते हैं। इसलिए गुरु रूपे कृष्ण ने कृपा करें भक्त गणे, गुरु रूप में ही कृष्ण हमको कृपा करते हैं, इसलिए हम गुरुवाष्टक में अंतिम श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवन्तस्य जस त्रिसंध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिनकी प्रसन्नता से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, जो अप्रसन्न होने से भगवान भी स्वयं अप्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे गुरुदेव की मैं त्रिसंध्या में वंदना करता हूं, सुबह सूर्य उदय के पहले और फिर सूर्य उदय ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त में, फिर दोपहर को मध्याह्न में, फिर संध्या में, तीन बार मैं सदगुरु को प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। इसलिए गुरु के प्रसन्न किए बिना कोई कृष्ण को कैसे प्राप्त करेगा, ये संभव नहीं है। बद्ध जीव को अवश्य गुरु स्वीकार करना चाहिए, जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते कि आदौ गुरु पादाश्रय, भक्ति के शुभारंभ करने के लिए सबसे पहले गुरु को स्वीकार करना जरूरी है। आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु के शरण लिए बिना कोई शुद्ध नाम लेना संभव नहीं है। कोई कहते कि नहीं हरे नाम नाम लेते रहेंगे, नाम प्रभु हमको उद्धार कर देंगे, लेकिन यदि वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, दीक्षा पुरस्सर्जा विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचांडाले सवारे उधारे, हरिनाम की महिमा को कहते हुए कहते कि हरिनाम का जप करना व हरिनाम के उच्चारण करना ये दीक्षा तक प्रतीक्षा नहीं करता है। हम दीक्षा जब नहीं लिए थे तभी भी हरिनाम करते थे, इसकन में आते हैं आपको पहले कहते हरिनाम करो, दीक्षा पुरस्सरण विधि अन्य अन्य मंत्र को पुरस्सरण करने के लिए कुछ इतनी बार आप जपा करोगे तभी ये सिद्ध होगा मंत्र, ऐसे कहते हैं इतने करोड़ जप करोगे तभी ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन हरिनाम ऑलरेडी सिद्ध मंत्र है, उसको सिद्धि करने का कोई जरूरत नहीं है, इतनी है इसको पुरस्सरण विधि अपेक्षा नहीं करता हरिनाम, दीक्षा पुरस्सरण विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचांडाले सवारे उधारे, यदि कोई जिह्वा में भगवान के नाम को उच्चारण करता है अजामिल की तरफ, अजामिल तो जान जान के भी नहीं किया, लड़का के नाम रख दिया था नारायण, नारायण पुकारते ही विष्णु दूत आ गए, इनको भगा दिए, किनको? जमदूतों को। लेकिन अजामिल के समान मुक्ति हमको नहीं चाहिए। अजामिल कहां कोई कोई ऐसे करके नामाभास से अजामिल वैकुंठ गेला रे, आभास नाम लिया और उसको विष्णुदूत जमदूत होते छुड़ा लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने घर बार छोड़ के हरिद्वार जाकर तपस्या करके शुद्ध नाम लेने के बाद गया। जब तक हम सदगुरु स्वीकार नहीं करते हैं भगवद्धाम पहुंचना संभव नहीं है, इन्हें तुरंत ले गए, इसको तुरंत ले गए विष्णुदूत, नहीं मुक्त कर ऐसे छोड़ा, इसको दिए टाइम फिर शुद्ध नाम लेने की। जब तक हमारे मन में भौतिक इच्छाएं भरे रहते हैं हम इसे मार्चिंग करके भगवद्धाम नहीं जा सकते हैं। समस्त भौतिक इच्छा से मुक्त होने के बाद भगवद्धाम में प्रवेश की जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी हमें सलाह देते कि तात्पर्य में तद विज्ञातम स गुरु बे, वेदों में कोट करते वेद से कहते कि तद विज्ञानार्थं स गुरु में अभिगच्छे। इसलिए दिव्य ज्ञान को जानने के लिए, भगवान के पास में पहुंचने के लिए, विधि को जानने के लिए हमें अवश्य सदगुरु स्वीकार करना चाहिए कि तत्वदर्शी गुरु के पास में जाकर सीखना चाहिए। जैसे गीता में भगवान भी कहते हैं चौथा अध्याय के 34 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तद विधि, विधि पूर्वक है शास्त्र विधि के आधार पर है गुरु की प्रसाद गुरु पदाश्रय शास्त्र विधि का है। इसलिए सबसे पहले गुरु के पास में जाना चाहिए। लेकिन प्रणिपात सेवा फिर परिप्रश्न, इन प्रश्न यदि तुम्हारे पास में है, जी हमारे पास में गुरु की चरण में समर्पण की भावना नहीं है, हम इनको आत्म तत्वदर्शी नहीं मानते हैं, तो फिर इनसे जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रणिपात परिप्रश्न है, उनको पहले सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, फिर इनसे जिज्ञासा करना चाहिए। प्रणिपात है ना परि तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न है ना सेवया। फिर जो तत्वदर्शी गुरु जो सत्य को दर्शन किया है वो हमें सत्य को सत्य के मार्ग में बा भक्ति में अग्रसर होने के लिए वो हमको मार्ग दर्शा सकता है। जो सत्य को दर्शन किया हमको भी सत्य के बारे में बता सकता है। ऐसे सद्गुरु को ढूंढ करना जरूरी है। गुरु की कृपा के बिना कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसी बात को प्रभुपाद ने समझा रहे हैं कि करके ये अदित ने इसकी एक साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करती है। वो भगवान को प्रसन्न करना चाहती है, लेकिन प्रसन्न करने के लिए वो जानती है कि किसी ना किसी से किसी को गुरु बनाना पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अपने पति को ही अपने गुरु रूप में मान ली और उनसे दैन्यता से नम्रता से पूछ रही बा, इनको कह रही नम्रता से करके आदि आदि सत्व दीजिए श्रेष्ठ, मुझे आदेश कीजिए। प्रभुपाद ने गीता के श्लोक भी कोट करते हैं, दूसरे अध्याय की 7 नंबर श्लोक जिसमें अर्जुन ने कहा था भगवान को है? क्या कहा था, शिष्यस्ते अहं साधिमांग त्वां कार्पण्य देश बहत स्वभाव है। वो कहे कि मैं बड़ा मोहित हो गया हूं, लेकिन हे प्रभु आप मुझे अभी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो। शिष्यस्ते अहं साधिमांग त्वां प्रपन्न। इसलिए जब भी अर्जुन शिष्य की भूमिका निभाया तभी भगवान ने गुरु की भूमिका निभाकर इसको सब गीता के ज्ञान प्रदान किए, नहीं तो पहले तो सोते सखा के रूप में संबंध था और जब तक ये गुरु के रूप में भगवान स्वीकार नहीं किया भगवान ने कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप सुन जाते सुनते थे, खाली बोलता था अर्जुन सुनते थे। लेकिन देखे कि भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो फिर बोला कि कुछ गड़बड़ी है, तो बोला ठीक है मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, अभी आप मुझे उपदेश दीजिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भौतिक बुद्धि के कारण इंद्रिय तृप्ति की भावना में मैं फंसे हुआ हूं, मेरे मति विचलित हो रहा है, क्या करना क्या नहीं करना मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार किया हूं। शिष्यस्ते अहं साधिमांग त्वां प्रपन्न। जब तक हम किसी को गुरु रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो हमको उपदेश कैसे मिलेगा भक्ति में प्रगति करने के लिए, हमको कोई उपदेश कौन देगा। इसलिए गुरु की जरूरत है, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु है। दोनों को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि दोनों को समान स्तर के सम्मान देना चाहिए। शिक्षा गुरु शास्त्र की शिक्षा देता है और दीक्षा गुरु मंत्र दीक्षी, मंत्र दीक्षा से हमको दीक्षित करते हैं, लेकिन दोनों की भूमिका हमारे आध्यात्मिक जीवन में अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखते हैं कि रूप रघुनाथ पदे रहु मर आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप रघुनाथ उनके दीक्षा गुरु नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको वंदना करते हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा से सारे शास्त्र के ज्ञान उनको प्राप्त हुई, शास्त्र के सिद्धांत को उन्होंने समझ पाए। इसलिए दोनों की ही जरूरी है, लेकिन फिर भी दीक्षा गुरु जो मंत्र दीक्षा देते हैं, हरिनाम की दीक्षा हमको देते हैं, बाप में गायत्री दीक्षा, वो भी श्रेष्ठ क्योंकि उनकी वो हमारी जमींदारी लेते हैं हमको भगवत धाम लेकर पहुंचाने में। दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, यही हो सकता है, लेकिन जिनसे हम दीक्षा व शिक्षा प्राप्त करते हैं इनको अवश्य सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमें यदि आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी हमें सलाह देते कि हमें अवश्य एक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु। लेकिन जहां पर गुरु की शब्द उपयोग की जाती है वो गोस्वामी होता है, गोदास नहीं होता है। गुरु अवश्य उपदेशामृत का पहला श्लोकों को जीवन में उच्चार लेना चाहिए, क्या वाचो वेगम मानस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वी शिष्यात। सारे विश्व में शिष्य बनाने के लिए योग्य है जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीवा उदर था उपस्थक वेग को संयमित करके रखा है, अर्थात जो गोस्वामी के पद पर है, वही व्यक्ति गुरु बनने की योग्य है, चाहे दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो। गुरु शब्द लगता तो इसको जानना है भी ये गोस्वामी होना चाहिए। हम कभी कभी हमारे कोई काउंसलर होता है, कोई गोस्वामी हमको थोड़ा उपदेश देता है, हम उसको गुरु मान लेते हैं, वो केवल मार्गदर्शक गुरु होता है, वो उसको शिक्षा गुरु नहीं कह सकते, पूरा गुरु शब्द वहां नहीं लगेगा, मार्गदर्शक है। अभी कोई आप पूछोगे बॉम्बे में आप दिल्ली जाना चाहते हो, कोई व्यक्ति केवल सुना है दिल्ली कैसे जाना चाहिए, फ्लाइट में बैठो चला जाए, वो तो इसलिए बता देगा आपको, बोला यहाँ पर ऐसे जाओ बॉम्बे एयरपोर्ट में जाओ, ये फ्लाइट में बैठ जाओ पहुंच जाओगे, बट ट्रेन में इस ट्रेन में जाओ अगस्त क्रांति में राजधानी कई ट्रेन जा रहा है उसे बैठ के चले जाओ पहुंच जाओगे, वो मार्ग बता सकता है लेकिन वो खुद गया नहीं है। मार्गदर्शक गुरु होते हैं, वो स्वयं नहीं गया भगवत धाम के बारे में, उसको कोई नॉलेज मैंने प्रत्यक्ष नॉलेज नहीं है, वो गया नहीं उधर, लेकिन सुना है ऐसा ही है। तो सुना है आपको बता दिया, लेकिन वो स्वयं अभी तक भगवत धाम जाने के लिए भी योग्य नहीं बना। तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी मार्गदर्शक गुरु को, मार्ग हम बताते, कोई भक्त डायरेक्टर होता है कोई है? लेकिन गुरु शब्द जहां पर लगेगा, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, वो अवश्य क्या होना चाहिए, गोस्वामी होना चाहिए। गोस्वामी हुए बिना कोई गुरु के पद निभा नहीं सकता, भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहिए और गोस्वामी होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत के पहला श्लोक में कहते गुरु की क्या योग्यता होना चाहिए। तो इसलिए हमें ऐसे ही गुरु को ढूंढ करके ही, किसी गोस्वामी जो कि भगवान के महान भक्त है तो उनको आचार्य रूप में बा गुरु रूप में स्वीकार करके उनसे अवश्य भगवत धाम प्राप्त करने के मार्ग को जानना चाहिए। उन्हीं के निर्देशन में भक्ति की विधियों को हमें अभ्यास करना चाहिए, वो हमको सिखाते हैं। हमारे स्थिति को जानकर हमें कैसे भगवत धाम जाना है, मार्ग को स्तर स्तर लेकर हमको वहां तक पहुंचाने के लिए बताते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते कि हमें जानना चाहिए कि यदि आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो अवश्य गुरु स्वीकार करना चाहिए। दीक्षा करे, शिष्य करे, आत्मसमर्पण सही सम कृष्ण सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब दीक्षा हम लेते हैं गुरु से, हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। दीक्षा लेने के बाद ये शरीर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहता है, हम कायो मानो मनो वाक्य में संपूर्ण रूप में समर्पित हो गए गुरु के चरण में। दीक्षा के अर्थ ही होता है शरीर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, अधिकार किसका हो गया, गुरु का। गुरु जैसे चाहे हमको ऐसे ही चलाएगा, पर हमारा शरीर उसी की सेवा में है, शरीर हमारा मन वाणी सभी हम गुरु की सेवा में समर्पित कर दिए, तभी तो कृष्ण हमको आत्मसम कर लेते हैं, हमको अपना लेते हैं। यदि कोई गुरु के चरण में उनके शुद्ध भक्त के चरण में समर्पित हो जाता है, भक्त ही भक्त जनप्रिय है। भगवान कहते अम्बरीश के उपाख्यान में दुर्वासा को कहते कि मेरे भक्त तो मुझे प्रिय है, अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र ही वदीज, हे ब्राह्मण मैं भक्त की भक्ति में पराधीन हूं। उसी नेक्स्ट लाइन में कहते कि भक्त ही भक्त जनप्रिय, मेरे भक्त तो मुझे प्रिय है, लेकिन मेरे भक्तों को चरण को जो आश्रय करके रहा है, ये ऐसे भक्त भक्तों की भक्त भी मुझे प्रिय है। इसलिए सदगुरु की जो शुद्ध भक्त उनके चरण में आश्रय करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु के चरण में समर्पित होते तो हम फिर सब कुछ समर्पण करते हैं, केवल देखवा नहीं। जैसे साधारण मायावादी लोग, बाहर के लोग क्या करते हैं, दिखा हो गया कथा, भागवत कथा कुछ कथा चल रहा था, कथा की बात नहीं, अभी महाराज दिखा देंगे, आ जाओ सर लाइन में, फीस डिपॉजिट करो 2100 डिपॉजिट करो और हो गया दिखा। गुरु शिक्षक का शिष्य का साक्षात्कार भी नहीं है, सीधा आ गया दिखा हो गया, फोटो मिल गया, गुरु जी के फोटो मिल गया, बस लेके टांग दिया बस घर में, हमारे शिष्य गुरु है, लोगों दिखाने के लिए देखो ये मेरा गुरु है, बस गुरु शिष्य कोई संपर्क नहीं रहता, ऐसे दिखा अनुमोदित नहीं है शास्त्र में। अवश्य गुरु और शिष्य परस्पर को जानना चाहिए, दोनों में संपर्क होना चाहिए, गुरु को भी शिष्य, गुरु भी शिष्य को जानना चाहिए, शिष्य भी गुरु को जानना चाहिए, गुरु से कैसे होगा। इसलिए इस कर्म में कम से कम तो एक साल प्रतीक्षा करना पड़ता है, शिष्य गुरु को जाने, गुरु शिष्य को भी जाने, ये आध्यात्मिक पिता है, पिता पुत्र में संपर्क नहीं तो कैसे गुरु दिखा है। इसलिए ये दीक्षा पद्धति स्कंद में शास्त्र के आधार पर है, ये गुरु भी शिष्य को जाने, शिष्य भी गुरु को जाने, और परस्पर में ये गुरु के पास में जो योग्यता कहा गया, शिष्य के पास में भी कुछ योग्यता होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य न समय न च दमय न च, गुरु को भी ब्रह्मचर्य पालन करना, इंद्रिय संयमता, मन की संयमता, गुरु को स्वीकार करना चाहिए, गुरु के आदेश को पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरु जो शिष्य है तो क्या, जो शासन में रहता उसको शिष्य कहते। इसलिए एक बार कोई किसी को गुरु बनाता है तो बाद में उसको और अधिकार नहीं है तो उनके तर्क करने के लिए। इसलिए गुरु चुनने के पहले हमारा अधिकार है, गुरु को देखना भाई उनके पास में प्रकृति में गोस्वामी है कि नहीं, भगवान के भक्त है कि नहीं, ये मुझे भगवत धाम पहुंचाने के लिए योग्य है कि नहीं। भेड़ के न्याय नहीं होना चाहिए, भेड़ का न्याय क्या जानते हो, तो भेड़ का तो पूरा ग्रुप आ रहे हैं, और एक व्यक्ति सामने खड़ा रहता तो देखने मजा, वो जानता है कि तो पहले जो फास्ट जो भेड़ आया उसकी सामने एक लाठी को ऊंचा थोड़ा रख देगा, तो भेड़ पहला वाला भेड़ क्या करेगा, जंपिंग करके चला जाएगा, बाद में वो भेड़ लाठी निकाल लिया, लेकिन सारे भेड़ वही जंपिंग करेगा, पहला भेड़ जहां जंपिंग किया सारे आएंगे वही जंपिंग करेंगे। इसी प्रकार हम देखते भाई वो दिखा लिया, हम दिखा लिया, वो दी लिया, हम भी सो रहे हैं, वो चले पीछे, ऐसे नहीं होता है। शिष्य को अवश्य गुरु की योग्यता का पर ध्यान देना चाहिए पहले, दिखा लेने के पहले ये सब अधिकार है, लेकिन दिखा लेने के बाद गुरु को साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही, उसी प्रकार उनको सम्मानित करना चाहिए। इसलिए रूपा जी हमें समझा रहे हैं कि अवश्य आध्यात्मिक जीवन में यदि आप प्रवेश करना चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, गुरु स्वीकार करना जरूरी और गुरु के चरण में आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को डांटे थे, कहा पुरी में, कि सनातन गोस्वामी के शरीर में सो घाव हो गया था जो ब्रज से जा रहे थे पुरी मार्ग में, लेकिन महाप्रभु बार बार आकर उनको आलिंगन करते थे, किनको, सनातन गोस्वामी, अच्छा नहीं लगता था उनके शरीर में, गंदे चीज सब महाप्रभु के शरीर में लगता था, प्लान कर रहे थे कि ये शरीर भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है और उनको भी कष्ट दे रहा है, इसलिए मैं शरीर को अवश्य अगले आने वाला जो रथ यात्रा है रथ के सामने सो जाऊंगा, मेरे ऊपर रथ चले जाएगा, बात समाप्त तो हो जाएगा शरीर। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने दूसरे दिन जब हरिदास ठाकुर के पास में ये रहते थे आए, हरिदास को लक्ष्य करी कहे, देखो हरिदास ये सनातन की कैसे बुद्धि है, ये रामकली में मुझे आत्मसमर्पण किया था, मैं इसको अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया था, तभी मैंने इसके नाम चेंज किया था, किससे, साकर मल्लिक से इसको सनातन नाम दिया था, और इसने अभी देखो इस शरीर को नष्ट करना चाहता है, शरीर उसका कहां रहा, दीक्षा लिया तो ये शरीर मेरा हो गया, सनातन के शरीर को माध्यम बनाकर मैं कितने सारे कार्य करने के प्लान बनाया हूं, लुप्त तीर्थ को उद्धार करना, वृंदावन में मदन मोहन को प्रकट कराना, कितने शास्त्रों को लिखना, हरिभक्ति विलास आदि बृहद भागवतम ग्रंथ आदि इनको माध्यम करेंगे, उसमें लिखाऊंगा शास्त्र की, कितनी कितनी सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, ये सनातन के शरीर को उपयोग करने के लिए मैं कितनी प्लान बनाया, और इसने मुझे बिना बोले छुपा कर मुझे शरीर को नष्ट कर देना चाहता है, इसकी अधिकार कहां है, दीक्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण, इसलिए जानना चाहिए कि ये गुरु की पूर्ण अधिकार है हमारे शरीर को उपयोग करने के लिए, किसकी सेवा में, कृष्ण की सेवा में, इसीलिए हम गुरु स्वीकार किए हैं, प्रभुपाद जी गुरु के आदेश के बिना कभी भी व गुरु की कृपा के बिना भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है, जो ऐसा ही चिंतन करता हो प्रकृति में अधम है, इसलिए प्रभुपाद कहते कि अदिति ने अपने पति को अपना गुरु मान लिया, जिससे वे अपना मार्गदर्शन कर सके कि किस तरह भगवान की पूजा करके आध्यात्मिक चेतना या भक्ति में प्रगति करनी चाहिए, गुरु के पास में इसीलिए जाना चाहिए, बा उनको इसी संबंधित आत्म साक्षात्कार के संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए, गुरु को नहीं पूछना चाहिए कि मेरा बिजनेस कैसे ठीक चलेगा, हमारा बिजनेस कैसे ठीक, पैसा कैसे मिलेगा, कुछ गुरु है ना बाएं गुरु नंबर दे दे, बोला ये नंबर का लॉटरी खरीद लो मिल जाएगा, गुरु की जाके ऐसे नहीं, फालतू प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बिजनेस कैसे चलता है, इंद्रिय तृप्ति की भावना है, इंद्रिय तृप्ति की भावना के संबंधित प्रश्न सब, इसके लिए गुरु नहीं है, गुरु को आप आध्यात्मिक दिग में कैसे उन्नति करोगे उस संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए, आध्यात्म विद्या विद्यानांग, जितनी विद्या संसार में है उनमें से भगवान कहते कि मैं आध्यात्म विद्या हूं, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान संबंधित ज्ञान गुरु से जिज्ञासा करना बा उनके साथ चर्चा होना चाहिए, गुरु भगवान के महान भक्त है, वो फालतू बात चर्चा नहीं करता है, इसलिए भगवान कहते कि मत चीत मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्याम तुष्यंति च रमंति च, मेरे भक्त के लक्षण क्या है, जब परस्पर को मिलते हैं केवल भगवान के बारे में चर्चा करते, प्रगल्प नहीं करते हैं, अभी वो क्रिकेट का न्यूज क्या है, वो फिल्म न्यूज क्या है, उधर का न्यूज क्या है, ये सब चर्चा गुरु, लेकिन गुरु के साथ नहीं करना, गुरु केवल आपका आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा कर, भगवान के संबंधित है, मदगत मत जो भगवान के चरण संपूर्ण शरणागत है, मत चीत मदगत प्राण, सदगुरु की मति सदा कृष्ण के चरण में लगा रहता है, उनके जीवन काल संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में समर्पित रहता है, मत चीत मदगत प्राण, और कोई भी उनके पास में आता है तो केवल भगवान के बारे में वो चर्चा करते, दिव्य ज्ञान के बारे में ही कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, बोधयन कथयन तस्माम नित्याम, सदा उन कृष्ण के बारे में बातचीत करने में, जन्म कर्म चमे दिव्यंग, इसी की चर्चा करने में लगे रहते हैं, ऐसे ही सदगुरु को अवश्य स्वीकार करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं, यही जीवन का सिद्धि है, आज ऐसे ही महाभागवत महाजन एक महान वैष्णव की भी आज क्या है, आज क्या कहते हैं भीष्माष्टमी, भीष्म देव के भी आज विशेष पुण्य तिथि है, उनके आविर्भाव है, इसलिए हम उनके भी सम्मानित करना चाहिए, विशेष में जो ब्रह्मचारी रहते हैं रहना चाहते हैं भीष्म देव को आदर्श को देखना चाहिए, भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत में इनकी इतिहास के बारे में बताया गया, ये स्वर्ग में अष्ट वसु है, आठ वसु में से एक वसु थे, कौन, भीष्मदेव, ये अष्ट वसु एक बार भ्रमण करते करते ये मर्त्यलोक में आए और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में एक कामधेनु रहता था, उसके लिए विश्वामित्र का भी साथ झगड़ा हुआ था, तो तो ये भी जब आ गए देखे कि ये विश फुलफिलिंग काउ समस्त प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, ये गाय इनके पास में है। तो उनमें से एक वसु अष्ट वसु में से देव है, इसे स्पेलिंग क्या है, डी ओ आई एन देव है, देव नाम की एक जो वसु अष्ट वसु में से भाई, इसके नाम अन्यत्र कहा गया कि विभास है, विभास नाम के जो एक वसु था, उन्होंने अपने स्त्री को होने पर इसको उसके स्त्री ने कहा कि ये गाय को ले जाएंगे, ये बाबा क्या करेगा इधर से मृत्यु लोक में, इसको है हम स्वर्ग में ले जाएंगे, हमारे पास में रखेंगे, गाय मुझे बहुत अच्छा लगती है। तो अपने पत्नी को होने पर ये जो विभास नाम की जो देव नाम की जो वसु ने इन्होंने गाय को चुराने में चुरा के ले जाने के लिए अन्य वसुओं की भी सहायता मांगा। बोले ठीक है तुम तो हमारे दोस्त हो, हम मदद करेंगे चलो। तो गाय को चुराने के लिए लोग ने जो प्लान बनाया, बलात्कार से गाय को खींच के ले जाना चाहते थे, पता लग गया किनको, वशिष्ठ ऋषि को। वशिष्ठ मुनि ने अभिशाप दिया, तुम सभी मर्त्यलोक में मानव जोनि में चले जाओ। तो ये बात को सुनकर सब भयभीत, फिर तुरंत ही अपने अपने त्रुटि को समझ कर माफी मांगने लगे। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहे कि अभिशाप तो मैं दे चुका, मुख से वाणी निकल चुका, ये सत्य होगा, लेकिन तुम लोग सभी जन्म लेके ही तुरंत फिर शरीर त्याग दोगे, फिर आ जाओगे ऊपर। लेकिन ये जो विशेष जो वसु है, जिसने विशेष रूप में स्वयं प्लान करके गाय को चुराना चाहता था प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष रूप से, उसी को अवश्य दीर्घ समय तक रहना पड़ेगा कहां, मर्त्य लोक में, मनुष्य जोनि में। जैसे कहीं वर्णन आता कि इनको सहायता करने के लिए उसमें गंगा देवी ने राजी हो गई, क्योंकि गंगा देवी भी वैकुंठ लोक से, वैकुंठ में ये भगवान विष्णु की पत्नी थी है? लक्ष्मी सरस्वती और गंगा, लेकिन विष्णु और सरस्वती में सरस्वती और गंगा में झगड़ा होने के कारण भगवान इनको नीचे भेज दिए है। वैकुंठ में कोई झगड़ा नहीं चलता है, लक्ष्मी रह गए लेकिन ये दोनों आए, तो इसलिए मर्त्य इनको भी मर्त्य लोक में आना था, किनको, गंगा को। तो गंगा जी इनको सहायता, जो इनके दुख देखकर सहायता करने चाहिए, इसलिए प्रकृत में ये गंगा जी फिर बाद में जब आके शांतनु को अपने पति रूप स्वीकार करते हैं, और ये ही शर्त रखती हैं गंगा ने, जो मेरे कार्यकलाप में आप कोई बाधा नहीं देना, जिस दिन मुझे पूछोगे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, ऐसा ही कर रही हूं, तब उसी दिन मैं आपको त्याग दूंगा, बा मेरी अपमानित करोगे मैं आपको त्याग दूंगा। शांतनु और गंगा दोनों की पति पत्नी के रूप में रहे थे, लेकिन जैसे परी प्रतिश्रुति था, ये गंगा के पुत्र के रूप में यही सब वसु लोग ने जन्म ले रहे थे, एक एक करके आ रहे थे। तो जाने के पहले से ही वशिष्ठ मुनि कहे थे जन्म के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी है, कैसे मृत्यु होगा, जन्म लेते ही गंगा ने इनको एक एक लेकर फेंक देती थी, कहा गंगा में विसर्जन करते, मृत्यु हो जाता था बच्चों का। सात तो मर गए, सात है अष्टम वसु, आठ लड़का, आठवां लड़का है भीष्म गंगा के, ये जो आठम शांतनु और गंगा के पुत्र आठम लड़का, और सहन नहीं कर पाए शांतनु, ये पहले से ही मैंने ये निर्णय है कि ये दीर्घ समय रहेंगे मर्त्य लोक में। इनको ले गंगा में भसाने के समय शांतनु ने कहे कि ए गांगी क्या कर रही है? गंगा से गांगी समझ गए, बोले ठीक हो गया अभी रखो, वो तो सब रहस्य को जानती थी, कौन गंगा, गंगा ये सात वसुओं की उद्धार कर दी, वो सब चले गए स्वर्ग में। लेकिन ये अष्टम वसु जो कि देव नाम की वसु बा, जो विभास नाम की वसु था, वो रह गया है। यही बने कौन, इनके बचपन के नाम क्या रहा, देवव्रत नाम से ये प्रसिद्ध हुए, शांतनु की शांतनु के पुत्र के रूप में बड़े प्रसिद्ध। लेकिन गंगा तो चले गए छोड़ के, गंगा चले गए तो ये अपने पिताजी के पास रहे शांतनु के पास है। लेकिन जब इनके ये तो राजा है, क्षत्रिय राजा कोई बैचलर नहीं रहता है, राजा को अवश्य गृहस्थ आश्रम में आना पड़ता है। तो गंगा चले गई तो शांतनु बड़े दुखी होकर फिर ढूंढ रहे, ऐसे घूमते घूमते मछुआरा की कन्या सत्यवर्ती के प्रति आकृष्ट हो गए। ये सत्यवर्ती पहले पराशर मुनि के के ओरोस को धारण करके ही व्यासदेव को भी जन्म दी थी है, क्योंकि पराशर मुनि की आशीर्वाद थी कि इसके घर में यदि वो कैवर्त कन्या थी, लेकिन उसकी शरीर से पद्मगंध है सदा विशेष सुगंध सदा सर्वत्र फैल रही थी। इसलिए जो शांतनु ने भ्रमण करते करते मत्स्य कन्या में ये जो देखे सत्यवती की, उसकी विशेष सौंदर्यता और उनके शरीर की इतनी अद्भुत सुगंध को मैं आकर्षित होकर इन्होंने उसको पत्नी बनाने के लिए चाहे। लेकिन सत्यवती के पिताजी ने कहा कि नहीं, जो मछुआर था वो कहा कि नहीं, आपका तो पहले एक बड़ा लड़का है, कौन देवव्रत है, और आप फिर तो राज सिंहासन के अधिकारी वही बन जाएगा, मेरे लड़कियों से जो पुत्र जो जन्म होंगे इनको तो कुछ नहीं मिलने वाला, मैंने नहीं दूंगा। यदि मेरी पुत्री की गर्भ से जो संतान जन्म होगा वो हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठने के लिए अधिकारी बनेगा तो अभी मैं दूंगा शादी। बड़ा समस्या हो गया, लेकिन देवव्रत के प्रति असीम स्नेह होने के कारण वो डिसीजन में राजी नहीं होते थे शांतनु, लेकिन बड़े दुखी रहते थे, सदा को चिंता चिंतित रहते थे। विष्णुदेव ने देखे कि पिताजी इतने चिंतित क्यों हैं, अन्य मंत्रियों से सलाह करके समझ गए कि पिताजी उसी की लड़की को चाहते हैं, किसको, सत्यवती को शादी करना चाहते हैं, लेकिन शर्त है कि सत्यवती के गर्भ से जो संतान जन्म होगा वही हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठेगा। विष्णुदेव ने स्वयं गए मछुआरा के पास, कैवर्त के पास, कहे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं हस्तिनापुर के सिंहासन में कभी नहीं बैठूंगा, तुम्हारे लड़की के गर्भ से जो संतान जन्म होगा वही हस्तिनापुर की अधिकारी बनेगा। कहे अरे तुम नहीं बैठोगे लेकिन तुम्हारे जो लड़का होगा फिर वो युद्ध करके कर पाए वो फिर क्लेम करेगा सिंहासन है। इसलिए भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इसका कहते भीष्म प्रतिज्ञा है, पूरे लाइफ टाइम सेलिब्रेट ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, मैं शादी करूंगा नहीं करूंगा तो मेरे संतान कहां से आएगा। इसलिए अपने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया, उसी से वो राजी हो गई है। कैवर्त कन्या सत्यवती के शादी फिर शांतनु के साथ हो गया, और उनसे फिर चित्रंगदा और विचित्र वीर्य दो पुत्र आए, किसे, सत्यवती के गर्भ से शांतनु की ओर से जन्म हुए। लेकिन चित्रंगदा एक गंधर्व का नाम भी था चित्रंगदा, और इसके नाम जो चित्रंगदा रख दिए तो कहे कि तू चित्रंगदा मेरा नाम क्यों रखा, चेंज कर तेरे नाम, गंधर्व ने आके चैलेंज दिया। दो चित्रंगदा नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो राजी नहीं हुए बोले लड़ाई करो मेरे साथ, लड़ाई हुआ कई सालों के बाद में फिर इनकी मृत्यु हो गया, किसका, विचित्र वीर्य बड़ा भाई का, चित्रंगदा का मृत्यु होने के बाद विचित्र वीर्य फिर राज्य में राजा बने, हस्तिनापुर के सिंहासन के ऊपर बैठे। विष्णुदेव ने पहले से ही प्रतिज्ञा ये वचन दिए थे, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन में जो भी बैठेगा उसको अवश्य सदा रक्षा करूंगा। अब विचित्र वीर्य के इतना पराक्रम नहीं था कि वो काशीराज की कन्याओं को शादी करना चाहते थे, मन में इच्छा था, लेकिन वो राजा महाराजा के साथ में लड़ाई करके उसको प्राप्त करना संभव नहीं था। स्वयंवर सभा में जाएंगे और इसके गले में जो माला डालेंगे अंबा अंबिका अंबालिका, इनको विश्वास नहीं था। इसलिए अपने भाई की इच्छा को जानते हुए भीष्मदेव ने गए चैलेंज लेकर, स्वयंवर सभा से ही तीन को उठा के लेके आए, काशीराज के तीन पुत्री को अंबा अंबिका अंबालिका को उठा के सीधे लेके आएगा, जैसे कोई भेड़ियों की भेड़ की क्या झुंड में कोई शेर पकड़कर शेर घुसकर किसको उठा के लेके जाता है। सारे स्वयं देखे, हर सालों ने आए, सालों महारथी थे वो भी आए, इन बहुत आसान से भीष्मदेव इनको परास्त करके भागा दिए। सालों ने चाहते थे किसको शादी करने के लिए, अंबा को। जब भीष्मदेव ने तीनों को लेकर आए, तीनों लड़की काशीराज की तीनों लड़की की, वो अंबा ने कहा कि मेरे पहले से संपर्क हो चुका किसके साथ, सालों को मैं शादी करना चाहता हूं। भीष्मदेव ने दोनों जो दो लड़की थे अंबिका अंबालिका, इनको तो शादी करा दी किसकी साथ, विचित्र वीर्य के साथ, अंबा को छोड़ दिया। लेकिन अंबा जब वापस जाती है सालों के साथ शादी करने के लिए, सालों कहता कि तुमको दूसरा पुरुष टच करके बाहु पकड़ के खींच के लेके गया, मैं तो शादी नहीं करूंगा। इसलिए अंबा ने वापस आकर कहे कि आप मुझे मेरे शरीर को स्पर्श करके मुझे हाथ पकड़ के मेरे बाहू को पकड़कर खींच के लाए रथ में, तुम मुझे शादी करो। भीष्म तो प्रतिज्ञा ले चुके पहले, मना कर दिया, मैंने तुम्हें शादी नहीं कर सकता हूं, ये वचन में दिया हूं मेरे पिताजी को, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा।
तो उससे उन्होंने परशुराम के पास गई अंबानी। परशुराम किसके युद्ध गुरु थे? भीष्मदेव के। परशुराम आए चैलेंज करने के लिए, मेरे बात नहीं सुनोगे? जानते हैं मैं कौन हूं? 21 बार निखित्र किया हूं दुनिया दुनिया को, अब तुम बाकी रह गया है? लेकिन भीष्मदेव अपने प्रतिज्ञा से अटल रहे। देख रहे थे कि परशुराम तो नीचे खड़े हैं, ये रथ के ऊपर बैठे। परशुराम उनको गुरुजी को कहे कि आप कृपा करके रथ के ऊपर आइए, रथ में मैं रथ में बैठा हूं तो आप भी रथ में बैठिए युद्ध करने के समय। लेकिन परशुराम हंसने लगे, बोले तुम दिव्य दृष्टि से देख, चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हो। देख रहे थे कि जिस वो बैठे हुए धरती के रथ में बैठे हुए, कौन? स्वयं माता धरती की है? तो इसमें वो दिव्य रथ में बैठते हुए इनको देखा। देखी कि भीष्मदेव ने युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन युद्ध में कोई किसको परास्त नहीं करने में सक्षम नहीं हुए। लेकिन भीष्मदेव ने अत्यंत क्रोधित होकर अंत में पाशुपत अस्त्र उठा लिए, जिस अस्त्र को सारी दुनिया समाप्त हो जाती है, शंकर जी के अस्त्र, दिव्यास्त्र। लेकिन ये दिव्यास्त्र को प्रतिरोध करने का उपाय इनको पता नहीं था, किसको? परशुराम को। तो इसलिए स्वयं देवता लोग ने आकर फिर रुके। ब्रह्मा जी कहे कि ये सब समाप्त हो जाएगा, युद्ध बंद करो। युद्ध समाप्त हो गया, परशुराम इनको परास्त नहीं कर पाए, किसको? जिसको परशुराम ही परास्त नहीं कर पाए तो उनको कौन परास्त करेगा? भीष्म। इसलिए किसी भी बैटल, किसी भी युद्ध नहीं है जिसमें वो परास्त हुए। स्वेच्छा से केवल अर्जुन को अपने मृत्यु का उपाय बताकर वो शरीर त्यागे। लेकिन इसलिए जब से ये अंबाद देखा कि उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, परशुराम भी बाकी कहेंगे माफ करना, ये संभव नहीं है, तुम दोनों की कंप्रोमाइज कर लो। लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं की, तो क्रोधित होकर जाकर शंकर जी को और तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया। कहा कि इस जन्म में नहीं है तो अगला जन्म में इसके मृत्यु का कारण बनूंगी, इसके। इसलिए ब्रह्मचारियों को कभी माताओं से कभी झगड़ा नहीं करना किसी स्त्री से। ब्रह्मचारी जो झगड़ा करेगा, कहते कि हट होता है स्त्री हट, नहीं तो बाल हट। ये हट पकड़ लेते नहीं छोड़ते हैं, जिद्दी पकड़ लेते छोड़ना मुश्किल है। अम्बा ने फिर कहा, गया शंकर को प्रसन्न करके ही अगला जन्म में शिखंडी बनकर आया है। पुरुष के शरीर में शुरू स्त्री का स्वभाव स्त्री का रहा, लेकिन शरीर पुरुष का मिल गया। कारण ये मृत्यु का कारण बनी, किसकी? भीष्मदेव की। अर्जुन के रथ में, रथ के सामने अर्जुन को है, भीष्मदेव ने स्वयं कहे, जब तक मेरे हाथ में अस्त्र रहेगा ये तीनों लोक में कोई व्यक्ति नहीं है मुझे परास्त करने वाला। बाबरे मृत्यु होना नहीं, मुझे मृत्यु होगा जब मैं स्वयं चाहूंगा तभी मृत्यु होगा। इच्छा मृत्यु की वरदान था शांतनु से, पिताजी से। तो पांडव लोगों ने कहे कि अच्छा है कि पितामह आप स्वयं ही अपने हस्त में हमको विनाश कर दो। भीष्मदेव कहे कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठे, धर्मराज के शासन में प्रजा सुखी रहेंगे। लेकिन कहे कि मुझे हटाने के लिए मैं तो पिताजी को वचन दिया हूं कि जो भी हस्तिनापुर सिंहासन में बैठा रहेगा उसको अवश्य मैं समर्थन करके उसको रक्षा करूंगा, क्योंकि अभी दुर्योधन बैठा है धृतराष्ट्र के पुत्र के रूप में, तो इसलिए मुझे तो युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे युद्ध से हटूंगा उपाय बताता हूं। विष्णुदेव त्रिकालज्ञ थे, महाजन जानते थे कि ये शिखंडी आई उसके लिए, कि शिखंडी को लाकर अर्जुन के रथ में खड़ा कर दो, अर्जुन के सामने। जो शिखंडी को मैं देखूंगा कभी भी अस्त्र धारण, क्योंकि क्षत्रिय योद्धा उसके समकक्ष योद्धा कोई सामने होगा तभी युद्ध करता है। इसलिए भीष्मदेव ने जो शिखंडी को देखे अर्जुन के सामने, तो बाण चलाना बंद कर दिए, धनुष और तीर रख दिए। इसलिए अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़ा हो कि तीर चलाते चलाते भीष्मदेव को सरसज्जा में साइत की। भगवान अर्जुन नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान कहते कि अरे अर्जुन, इसने ही अन्याय युद्ध में भाग लेकर किसको वध किया था? ये सभी सप्तरथी मिलकर तेरे पुत्र अभिमन्यु को वध किए थे, मत छोड़। तो इस प्रकार भीष्मदेव की महाप्रयाण हुआ। किसकी सज्जा, किसकी तीरों में से? अर्जुन की तीरों, बाणों की सज्जा में साहित हो रह गए। और इसी प्रकार, लेकिन पहले खुश थे, प्रसन्न थे। दुर्योधन लेकर पानी जो मांगते थे, लोटा में पानी लेकर देना चाहता था अर्जुन को, क्यों? दुर्योधन और पूरा बाणों की सज्जा में तो शरीर था, लेकिन सिर ऐसा ही नीचे झुक रहा था, इसलिए कहे कोई पिलो चाहिए सोचकर दुर्योधन बड़ा बड़ा पिलो लेके देता था। भीष्मदेव ने कोई मूर्ख वीर को ऐसा ही युद्ध क्षेत्र में इसे पिलो के अर्जुन को देखे तो अर्जुन दोनों तीर को ऐसा ही छंद कर रख दिया, बीच में सिर रखे। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्रयोग करके माता गंगा को प्रकट कराई, गंगा जल डायरेक्ट जाकर उनके मुख में गिरी, किसके? भीष्मदेव के मुख में। भीष्मदेव गंगा जल को पीते हुए शरीर पहले तो अर्जुन की तीरों में से बाणों से सारे खून शरीर से निकाल गए थे। जब वे भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को लेकर भीष्मदेव की सज्जा पर पहुंचाए जो बाण सज्जा के पास, तभी भीष्मदेव के मुख से हितोपदेश सुनने के लिए उन्होंने किसको कहा? पांडवों को कहे, और युधिष्ठिर को इन्होंने हितोपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति हंस रही थी, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कौन? द्रौपदी। बोले बड़े नीति उपदेश दे रहे और मेरे को जो विवसन कर रहा था कौन? भूरी सभा में मेरे केस पकड़ खींच रहा था दुशासन, इनके उपदेश कहां था? भीष्मदेव ने तभी द्रौपदी की तरफ देखकर बोले कि बेटी समझ रही हूं क्यों तुम हंस रही हो, लेकिन उस समय में विवश था हैं? लेकिन दुर्योधन की अन्न खाने के कारण मेरे शरीर में जो खून था सो पाप हैं? पाप अन्न में इस खून बना हुआ था, मेरे हिताहित ज्ञान उस समय बुद्धि समाप्त हो चुका था, इसलिए विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले न हे कृष्ण र स्मरण। बड़ा अच्छा लगता है फिस्ट खाना है, किसी घर में कोई लाइफ मेमोरी घर में इनविटेशन आता है, बहुत अच्छे अच्छे पहले से मेनू दे देते हैं, बासमती चावल पनीर सब पहले से मेनू जाता है, लेकिन विषय का अन्न खाने से हमारा मन कलुषित हो जाता है। भीष्मदेव स्वयं कहे, लेकिन अर्जुन ने मेरी बड़े उपकार की है, इन्होंने ये बाणों के सज्जा बाणों मेरे ऊपर बार बार तीर को प्रयोग करके मेरे शरीर से जितनी भी दुर्योधन के पाप अन्न में खाया हुआ खून को सब बाहर निकाल दिया, और इन्होंने ही माता गंगा को लाकर मेरे मुख में डायरेक्ट डाली है, ये गंगा जल पी के मैं संपूर्ण चेतना मेरे शुद्ध हो चुका है, इसीलिए मैं उपदेश देने की अभी योग्य हूं। इसलिए भीष्मदेव फिर उपदेश दे, फिर द्रौपदी सुनने लगी, युधिष्ठिर महाराज ने डांटे द्रौपदी को, तो फिर वो श्री महाजन है भगवान ने इनकी मुखारबिंद से युधिष्ठिर महाराज जो उपदेश दिए थे भागवत की प्रथम स्कंद में इसके बहुत सुंदर वर्णन है। इसके साथ साथ आज जो भारतवर्ष में कहीं भी लोग विष्णु सहस्रनाम को पाठ करते हैं, ये विष्णु सहस्रनाम किसकी मुख से निश्चित हुआ है? भीष्मदेव की मुख से है। जैसे उनकी इच्छा था भगवान को निहारते हुए सामने देखते हुए, जैसे जो इच्छा था किनकी? हरिदास ठाकुर की है। हृदय धरी मु तब कमल चरण, नयने हरिबु तब चांद बदन, मुखे उच्चारी मु कृष्ण चैतन्य नाम, एई मत इच्छा मोर छाड़ी मु पराण। हरिदास ठाकुर की इच्छा था कि हे गौरांग, आपके चरण कमल को हृदय में धारण करते हुए, आपके मुखारविंद को निहारते हुए, आपके नाम को मुख से बार बार उच्चारण करते हुए, कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य जैसे मेरे शरीर छूट जाए। उसी प्रकार भीष्म की स्थिति, भीष्मदेव के मन में भी ऐसा ही इच्छा था, भगवान के मुखारविंद को निहारते हुए, चरण कमल को हृदय में धारण करते हुए, उनके नाम बार बार उच्चारण करते हुए शरीर जैसे छूट जाए। इसलिए भगवान ने उनकी इच्छा जानते हुए अंतिम समय में उनके पास में उपस्थित रहे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को निहारते हुए, चरण कमल को हृदय में धारण करते, बार बार भगवान के नाम उच्चारण करते, विष्णु सहस्र नाम उच्चारण करते हुए, भगवान के नाम उच्चारण करते करते शरीर छोड़ दिया, क्योंकि इच्छा मृत्यु था, इनको ऐसा कोई मार नहीं सकता, किसी भी अस्त्र सके इनको है, और जब स्वयं इच्छा करेंगे तभी इनकी मृत्यु होगा। इसी प्रकार भीष्मदेव यदि वो मूल रूप में एक अष्टवसु के रूप में थे, लेकिन उन्होंने महान आचार्य के बाद एक महान भागवत महाभागवत वैष्णव बने, गंगा पुत्र भीष्म द्वादश महाजन में से एक महाजन माने जाते हैं। उनकी मार्गदर्शन करना, उनकी शिक्षाओं को पढ़ना, मनन करना और जीवन में उतारना, ये अवश्य हम सभी के कर्तव्य है। महाजन जेन गतस्य पंथा। भीष्मदेव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।